लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थ याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का एक निमंत्रण देता है। संत पापा की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर नारी स्वरूप भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रतेल्ली तुत्ती के प्रथम अध्याय का शीर्षक एक बंद विश्व के ऊपर काले बादल है। इस अध्याय में हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कोरोना महामारी और इतिहास में अन्य दूसरी महामारियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपने लिए शानदार और शान शौकत में रहने के सपने देखे, लेकिन हम उस स्थिति में पहुंच गए जहां व्याकुलता, द्वंद्व और अकेलापन है। हम दूसरों से जुड़े रहने की क्रियाकलाप से ग्रसित हुए और भ्रातृत्व के स्वाद को खो दिया। हमने अपने लिए तुरंत और सुरक्षित परिणाम की कामना की, जो केवल हमें अपनी अधीरता और चिंता से बरी करती है। हम अपने जीवन शैली, अपने संबंध सामाजिक संघों और उनसे भी बढ़कर अपने जीवन के अर्थ पर पुनर्विचार करें। श्रोताओं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यद्यपि इस वैश्विक आपदा को हमारे जीवन की वास्तविकता से संयुक्त करते हुए देखना हमें कठिन लगता है, क्योंकि हम अपने को जीवन के सर्वोच्च स्वामी और दुनिया की सारी चीजों के मालिक स्वरूप देखते हैं। संत पापा कहते हैं कि मैं दिव्य प्रतिकार के बारे नहीं कहना चाहता और न ही यह कहना अपने में काफी होगा कि सृष्टि का विनाश जो हम करते हैं स्वयं हमारी गलतियों के लिए सजा का कारण बनती है। दुनिया स्वयं अपने में विरोध करते हुए रोती है। हम कवि विर्जिल के पदों चीजों के आंसू से भली भांति वाकिफ हैं, जो हमें जीवन और इतिहास के दुर्भाग्य का हाल प्रस्तुत करता है। वे जो प्रवासन का शिकार होते अपने को अपने जन्म स्थल से अलग होने का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही वे अपनी संस्कृति और अपने धार्मिक जड़ों से अपने को अलग पाते हैं। हम समुदाय में भी एक तरह से बिखराव को पाते हैं। समुदाय अपने में इस बात का एहसास करती है कि उसने एक उत्साही और विशेष व्यक्ति को खो दिया है। परिवार, खासकर जब माता पिता दोनों अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे स्थानों में पलायन करते हैं। यही कारण है कि हमें इस बात, इन सारी घटनाओं के उपरांत हम उनके लिए और वे की बातों को भूलकर सिर्फ हमारा शब्द को उच्चारित करें। यदि ऐसा होता है तो यह इतिहास की एक अन्य त्रासदी मात्र होगी, जिससे हमने कुछ भी नहीं सीखा। यह हमें केवल उन बुजुर्ग लोगों की याद दिलाए जो श्वसन यंत्र की कमी के कारण मर गए, जो हर साल स्वास्थ्य प्रणाली में कुछ हद तक एक उजाड़ के हाल को प्रस्तुत करता है। यदि केवल यह बड़ा दुख हमारे लिए बेकार न जाए, वरन हमें जीवन को एक नई शैली से जीने हेतु प्रेरित करे। यदि केवल हम अपने में इस बात का एहसास करें कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। केवल इस भावना से मानव परिवार अपने में एक पुनर्जन्म का अनुभव कर सकता है, जहां हम अपने द्वारा खड़ा किए गए दीवारों के परे अपने को दूसरों के चेहरे में देखते, दूसरों के हाथ और आवाज बनते हैं। जब तक हम एक साझा करने वाली प्रेरणा से अपने को उत्प्रेरित नहीं करते, जो समुदाय के संग रहने और एकता का प्रतीक है, हमारी शक्ति और उत्पादन क्षमता, जिसे हम वैश्विक भ्रम स्वरूप पाते हैं, हमें दिग्भ्रमित करता रहेगा और हम अपने को खोखलेपन और दुखों से जकड़ा हुआ पाएंगे। हमें यह मानने से इनकार नहीं करना चाहिए कि उपभोक्तावादी जीवन शैली का जुनून, जब कुछ लोग इसे बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो यह हमें केवल हिंसा और आपसी विनाश की ओर अग्रसर करता है। हर आदमी अपने लिए की धारणा तेजी से अपने को सभी चीजों से मुक्त करने की कोशिश करेगी, जो किसी भी महामारी से भी बदतर साबित होगी। श्रोताओं, कुछ लोग लुभावन राजनीति शासन साथ ही कुछ उदार आर्थिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रवासियों के तांता को हर कीमत पर रोका जाना है। गरीब देशों को सहायता सीमित करने के लिए भी तर्क दिए जा रहे हैं, ताकि वे अति दयनीय स्थिति में पहुंचते हुए स्वयं में कठिन मेहनत करने को मजबूर हों। इस तरह के बयानों के पीछे, जो अपने में अर्थहीन और समर्थन के अतीत हैं, कोई यह महसूस करने में विफल रहता है कि जीवन की एक बड़ी संख्या को हम दांव पर लगा देते हैं। बहुत से प्रवासी हैं जो युद्ध, प्रताड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के कारणों से विस्थापित हुए हैं। वही दूसरे हैं जो अपने और अपने परिवार की जीविका हेतु अवसर की तलाश में हैं। वे अपने अच्छे भविष्य के सपने देखते और उस सपने को साकार करने हेतु अवसरों को उत्पन्न करने की चाह रखते हैं। दुख की बात है कि बहुत से लोग पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते हैं, जो बहुत बार उनके लिए अवास्तविकताओं को लेकर आती और वे निराशा के शिकार होते हैं। बेईमान जालसाज, जो बहुत बार मादक पदार्थों के तस्कर या हथियारों के व्यापारी होते, प्रवासियों की कमजोरियों का गलत फायदा उठाते हैं, जिन्हें स्वयं कई बार हिंसा, देह व्यापार, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तथा कई तरह की असंख्य शोषणों का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावे उन देशों में जो प्रवासियों को अपने में स्वीकारते हैं, जो उनमें एक तरह से भय और सतर्कता उत्पन्न करता है, जिन्हें वे अपनी राजनीतिक लाभ हेतु उपयोग में लाते हैं, यह विदेशियों के भय की मानसिकता को जन्म देता है, जहां स्थानीय निवासी अपने को अपने में ही बंद कर लेते हैं। इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है। प्रवासियों को इस रूप में देखा जाता है मानो वे उस समाज के अंग नहीं हैं, और इस भांति इस बात को भुला दिया जाता है कि वे भी अपने में मानवीय सम्मान के हकदार हैं। अतः उन्हें चाहिए कि वे स्वयं अपने में मुक्ति का साधन बने। हम में से कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि वे मानव हैं, यद्यपि हम अपने निर्णयों और उनके साथ पेश आने में उन्हें द्वितीय दर्जे के मानव, अयोग्य, कम महत्व के व्यक्ति स्वरूप देखते हैं। ख्रिस्तियों के लिए इस तरह का व्यवहार अपने में अस्वीकार्य है, क्योंकि यह हमारे विश्वास के ऊपर कुछ राजनीतिक प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, जैसे कि जाति, धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना प्रत्येक मानव व्यक्ति की अतुलनीय गरिमा और भ्रातृत्व प्रेम हमारे लिए सर्वोच्च नियम है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रेटेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, महिमा तेरी गाता। सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। करतार तू ही पालनहार और तू ही राखनहार, करतार तू ही पालनहार और तू ही राखनहार। तूने ही हमको मुक्ति दी, तू ही है तारणहार, तूने ही हमको मुक्ति दे, तू ही है तारणहार। महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 17 नवंबर के ट्वीट संदेश में कहा, हम एक मुस्कान ही गरीब के साथ क्यों ना बांटें, वह प्रेम का एक स्रोत होता है। उन लोगों का बढ़ाया हुआ हाथ मुस्कान द्वारा हमेशा मजबूत होता है जो ख्रिस्त के शिष्य होने के आनंद से प्रेरित होकर चुपचाप और निर्विमान मदद करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने क्वीटो के सेवानिवृत्त महाधर्मदर्श कार्डिनल राउल एद्वार्डो वेला किरिबोगा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी सेवाओं एवं निस्वार्थ समर्पण की याद की। कार्डिनल राउल का निधन रविवार को हुआ। संत पापा ने इक्वाडोर स्थित क्वीटो के महाधर्मदर्श अल्फ्रेडो जोश एस्पिनोसा मत्तेओ को एकता संदेश भेजकर कार्डिनल राउल के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने संदेश में संत पापा ने कहा है कि वे मृत कार्डिनल के परिवार वालों एवं क्वीटो में कलीसियाई समुदाय के करीब हैं। उन्होंने कहा है, इस निस्वार्थ चरवाहे की याद करते हुए जिन्होंने कई सालों तक और निष्ठापूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन ईश्वर और कलीसिया के लिए समर्पित किया, मैं उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ तथा पुनर्जीवित ख्रिस्त में ख्रिस्तीय आशा के चिन्ह स्वरूप उनके समुदाय को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 86 वर्षीय कार्डिनल का निधन स्वाभाविक रूप से क्वीटो के संत कमिलुस अस्पताल में 15 नवंबर को हुआ। उनकी दफन क्रिया 17 नवंबर को क्वीटो के महागिरजाघर में संपन्न किया जाएगा। कार्डिनल राउल एद्वार्डो वेला किरिबोगा का जन्म 1 जनवरी 1934 को रियो बाम्बा में हुआ था। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें 20 नवंबर 2010 में कार्डिनल बनाते हुए विया में संत मरिया के कार्डिनल पुरोहित नियुक्त किया था और 2015 में संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें पेरू के 10वें राष्ट्रीय यूकारिस्टिक कांग्रेस के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। उधर युवा अर्थशास्त्रियों एवं उद्यमियों के लिए फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था जब इस सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली है। भारत की शिक्षिका अन्ना मरिया जोर्जी ने कहा है कि इस अवसर की उम्मीद है मानव प्रतिष्ठा को पहले स्थान पर रखने हेतु युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को आत्मा प्रदान करना। फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था का उद्घाटन बृहस्पतिवार 19 नवंबर को होने वाला है। यह ऑनलाइन कार्यक्रम है और 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र इटाली शहर असीसी होगा। संत पापा के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम की उम्मीद है युवाओं को प्रेरित करना कि वे संत फ्रांसिस असीसी के पद चिन्हों एवं विश्व पत्र लौदातो सी के अनुसार वैश्विक परिवर्तन प्रणाली की शुरुआत करें। इसका दूसरा लक्ष्य है युवा अर्थशास्त्रियों एवं उद्यमियों को न्याय, समावेशिता और स्थिरता के साथ आर्थिक प्रणाली को पुनर्निर्मित करने की दिशा में काम करने हेतु प्रेरित करना। जैसा कि संत पापा फ्रांसिस के हाल में प्रकाशित विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती में कहा गया है, फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था काम, वित्त, शिक्षा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालेगी। अन्ना मरिया जोर्जी के अनुसार फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था एक समुदाय है ऐसे लोगों का जो जीवन की विभिन्न दशाओं से आते हैं। किंतु जो विश्वास करते हैं कि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उससे हम बेहतर कर सकते हैं। बेंगलुरु की इस युवा कार्तिक शिक्षिका का कहना है कि वह और उसके साथी उम्मीद करते हैं कि वे मानव व्यक्ति एवं मानव प्रतिष्ठा पर केंद्रित एक नई सच्चाई को उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, विश्व अर्थव्यवस्था जितना अधिक विस्तृत है या हम प्रत्येक से शुरू हो सकता है, इसका अर्थ है कि इसकी शुरुआत मेरे समान युवा से हो सकता है, मेरे घर में, मेरे कार्यस्थल में और जो मैं चुनाव करती हूं उसके द्वारा। हल्की लहर के रूप में फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था एक परिवर्तन ला सकती है, दुनिया भर के युवाओं को एक मंच देते हुए कि वे एक साथ आएं और विचार मंथन करें। उनका कहना है कि बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए कि सभी लोगों के साथ मानव व्यक्ति की तरह बर्ताव किया जाए, सभी को मानव के रूप में देखा जाए और इसकी शुरुआत खासकर बच्चों से किया जाए। कलीसियाओं के विश्व परिषद ने इथोपिया की सरकार एवं टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट से अपील की है कि वे अपने विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण रास्तों को अपनाएं। उन्होंने जारी संकट के बीच इथोपिया के लोगों एवं कलीसियाओं के लिए प्रार्थना की है। इथोपिया में संघर्ष की शुरुआत 4 नवंबर को हुई जब प्रधानमंत्री अब्बी अहमद ने टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के प्रति वफादार सशक्त बलों द्वारा संघीय सैनिकों पर हमले के जवाब में सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारी जनहानि हुई और हजारों नागरिक भाग गए। एक वर्चुअल सभा के बाद जारी बयान में कलीसियाओं के विश्व परिषद की कार्यकारी समिति ने कलीसियाओं और समुदायों के विरुद्ध कई क्रूर हमलों की निंदा की है, विशेषकर इथोपियाई ऑर्थोडॉक्स देवाहेदो कलीसिया के प्रति जो सबसे अधिक प्रभावित है। WCC ने संघर्ष के कारण विस्थापित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए प्रार्थना की है कि उन्हें सुरक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता मिले ताकि वे अपने घर लौट सकें। उन्होंने कहा है कि हम उनका विरोध करते हैं जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इथोपिया के लोगों के बीच तनाव, विभाजन, शत्रुता और रक्तपात को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सभी जोखिम उठाने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे इस नई तबाही के कागार से पीछे लौटें और विभाजन के बजाय सहयोग एवं संघर्ष के बजाय संवाद के रास्ते को अपनाएं। WCC ने इथोपिया की सभी कलीसियाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और प्रोत्साहन दिया है कि वे हिंसा एवं घृणा के खिलाफ वार्ता, शांति, न्याय एवं एकता हेतु अपने नबी की आवाज को बुलंद करें। इस बात पर गौर करते हुए कि वर्तमान संकट कई समवर्ती चुनौतियों के पृष्ठभूमि के खिलाफ पैदा हुआ है, विशाल इथोपिया पुनर्जागरण बांध के साथ जुड़े क्षेत्रीय तनावों सहित 25 वर्षों में सबसे बुरा टिड्डी आक्रमण, खाद्य उत्पादन पर गंभीर प्रभाव और COVID-19 महामारी के संकटों के ऐसे समय में समिति ने सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है। बयान में पुष्टि दी गई है कि WCC इथोपिया और इरिस्ट्रिया में कलीसियाओं एवं धार्मिक समुदायों के बीच वार्ता और सहयोग के समर्थन के प्रति प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। संघीय सरकार और ट्राइग्रे क्षेत्र राज्य के बीच तनाव कई महीनों से बढ़ रहा है। कई समीक्षकों का भय है कि संघर्ष बढ़ सकता है और इथोपिया के दूसरे प्रांतों के साथ इरिस्ट्रिया, सूडान और सोमालिया को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।